हकीकत में आप मन नहीं हैं, लेकिन मन के साथ जुड़ जाते हैं। शुभ करते हैं तो शुभ के फल की आकांक्षा पैदा हो जाती है, और शुभ वृत्ति उठती और अशुभ क्रिया होती है तो उससे तपन पैदा होती है। ये शुभ और अशुभ का प्रभाव तब तक पड़ता रहता है जब तक मन के साथ अपन जुड़े हैं। मन के साथ जब तक जुड़े रहे तब तक मन एकाग्र भी नहीं होता। मन के साथ जुड़े रहे तब तक मन कभी ऊंचे तो कभी नीचे ले जाता है, घुमाता रहता है, घूमना बंद नहीं होता। फिर चाहे ब्रह्मलोक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे वैकुंठ में जाए, चाहे कैलाश में जाए, चाहे पाताल में जाए, लेकिन मन के साथ जब तक संबंध है तब तक जाना ना मौजूद है, और जब तक जाना ना मौजूद है तब तक क्लेश मौजूद है। तो मन की जो वृत्ति शुद्ध और मलिन उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों के साथ अपने को जोड़ने की आदत पड़ गई, जुड़ जाने की आदत पड़ी। जैसे लहरें उछलती है छोटी बड़ी, उस छोटी बड़ी लहरों को दूर से देखो तो कोई हरकत नहीं, लेकिन उन लहरों के साथ, दरिया के लहरों के साथ अगर मिल गए तो पटक देती। ऐसी इन वृत्तियों के साथ मिल जाते हैं तो ये पटक देती है। जो तुमने उपदेश सुना है उसको ठीक से बार बार विचारो। बार बार विचारने से जगत भ्रम दूर हो जाएगा। ये जो पांच भौतिक शरीर तुमको अपना भास रहा है, मैं पने से दिख रहा है, वास्तव में ये आप नहीं है। ये पांच भौतिक शरीर आप नहीं है। जैसे बाल आप नहीं है, नख आप नहीं है, ऐसे ही चमड़ा आप नहीं है, हड्डी आप नहीं है, मज्जा आप नहीं है, पित्त आप नहीं है, कफ आप नहीं है। अगर आप बात, पीत, कफ, हड्डी, मज्जा, मल होते हैं तो आपको ये नाम प्रिय लगता, लेकिन आप ही नहीं है। अगर आपको कोई बुला के कहता कि हड्डियां इधर आओ, बात, पीत, कफ, मल, मज्जा इधर आओ, तो आपको कितना बुरा लगता है। ये बिल्कुल आपके अनुभव से निकल रहा है कि आप ऐसे नहीं हैं। आपको कोई ये कह दे आइए भगवान, तो आपकी गहराई से संतोष का एहसास होता है। आइए प्रभु, तो आपको मंगल लगता है। आइए सच्चिदानंद, मंगल लगता है। आप सच्चिदानंद हो ये मंगल लगता है, आप हड्डी मांस हो ये अमांगलिक लगता है, आप आत्मा हो, अमर हो, अजर हो, तो ये बात आपको जगती है। आप हाड मांस हो, वात पित्त कफ हो, मवाद हो, मल मूत्र हो, ऐसा करके कोई संबोधन करे तो नहीं चलता है। तो हकीकत में आप नहीं है। तो आप अपने शुद्ध स्वरूप का बार बार चिंतन करो। अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करने से देह के साथ का तादात्म्य घट जाएगा। देह के साथ जितना तादात्म्य घटता है उतना ही भय, शोक, चिंता, पाप, ताप क्षीण होता है। देह को मेहमान कर कितना भी कुछ करो तो विकार छोड़ते नहीं, और आत्मा को मेहमान कर विश्रांति पाओ तो विकार की दाल गलती नहीं। भय, शोक, चिंता, विकार, मुसीबत, टेंशन, जो कुछ है जन्म मृत्यु, वह देह के साथ मैं मानने से जोर पकड़ता है, मजबूत होता है, और देही के साथ अगर एकता का बोध हो जाए, एकता करनी नहीं है, एकता तो आपकी है। जैसे शरीर का नाम आसाराम है, तो आसाराम से मुझे मिलना नहीं, आसाराम तो हूँ। ऐसे ही विदेही तो हम हैं, विदेही बनना नहीं है, विदेही से मिलना नहीं है। आत्मा बनना भी नहीं, आत्मा से मिलना भी नहीं, आत्मा को देखना भी नहीं। आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा को देखेगा कौन? अनात्मा से तो आत्मा देखेगा नहीं, और आत्मा आत्मा दो होता नहीं, तो आत्मा को देखना भी नहीं। लेकिन अपन है आत्मा और मान रहे हैं जो चोला मिलता है उसको मैं, ये जो गलत अध्यास है उसको छोड़ना है। कई साधकों का प्रश्न है, नासिक का डॉक्टर साधना करते बोले हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, कैसे बता सकते? देह को मैं मानने की, देह के मान अपमान की असर गहरी हो रही है पहले से, तो समझो पीछे गिर रहे हैं, और देह का मान अपमान कम असर हो रही है तो समझो आगे बढ़ रहे हैं। विकारों के तरफ आकर्षण हो रहा है, मान बढ़ाई के लिए भोग के लिए आकर्षण बढ़ रहा है तो समझो पीछे गिर रहे हैं, और उन रोगों की बेपरवाही महसूस हो रही है तो समझो आगे। आनंद, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंद्वता, साहस और संकल्प विकल्प कम हो रहे हैं तो समझो आगे बढ़ रहे हैं, और ऐहिक नश्वर जगत के भोगों के संकल्प विकल्प भय आदि के ज्यादा हो रहे हैं तो समझो हम पीछे गिर रहे हैं। पहले जो दुख आता था या सुख आता था, जो प्रभाव डालता था, उससे अगर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो समझो आप पीछे गिर रहे हैं, और कम प्रभाव पड़ता तो आप समझो आगे बढ़ रहे हैं। तो आनंद, उल्लास, समता, एकता, एकता की दृष्टि बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देह में मोह होता है तो कुटुंब का हित अहित नहीं सोचता, अपनी अपने देह के विषय में उलझा रहता है। देह के दायरे से अगर थोड़ा बाहर होता है तो कुटुंब का दायरा, जातिता का दायरा अगर करेंगे तो गांव का, राज्य का हित न सोच सकेंगे, जातिता में संकीर्णता बनी रहेगी। अगर देश, गांव का या राज्य का दायरा बना लेते हैं तो जातिता के दायरे को खा जाता है और थोड़ी व्यापकता आ जाती है। राष्ट्र का दायरा बना देते हैं तो प्रांतीयता राज्यपने के दायरे को अपने में समा लेता है, और राष्ट्रीयता का दायरे से विश्व का दायरा अगर आ जाए, विश्व के साथ एकता का विचार आ जाए, तो राष्ट्रीयता की जो द्वंद्व है, संघर्ष है, ये राष्ट्रीयता की संकीर्णता के कारण ही बम बनाए जाते हैं। शांतिता से संकीर्णता के कारण ही राष्ट्र को खंड खंड किया जाता है, और जातिता के संकीर्णता के दायरे के कारण मानवता को खंड खंड किया जाता है। अगर विश्वात्मक दृष्टि है तो सारे प्रॉब्लम, संघर्ष दूर हो जाते हैं, और विश्व का आधार स्वरूप जो अपना मैं चैतन्य है उसमें आ जाता है तो ब्रह्मांड के दायरे भी समाप्त हो जाते हैं, लोक लोकांतर के दायरे समाप्त हो जाते हैं, फिर वो मेरा तेरा नहीं, सर्वत्र अपने सत्ता का अनुभव होता है। भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत कि यहाँ सुख नहीं, मरेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, उस हेतु से भक्ति करते हैं तो जरूर आप वैकुंठ में जाएंगे अगर भक्ति फलित है तो, वैकुंठ के दायरे में रहेंगे तो सीधा रहेंगे तो दुख रहेगा, नरक में जाएंगे तो दुख रहेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो दुख रहेगा, वैकुंठ में ही सुख मिलेगा, और वैकुंठ में सुख मिलेगा तो एक दिन वैकुंठ भी महापरलय में, आत्यंतिक परलय में समाप्त होगा, तो नारायण की कृपा से स्वरूप का बोध होगा तो आप स्वरूप में चले जाएंगे। अगर वैकुंठ में बैठे बैठे फिर यहाँ पे इच्छा वासना आ गई तो फिर यहाँ आना पड़ेगा, अब वैकुंठ में जाने के बाद नारायण की कृपा से आपको नारायण तत्व का ज्ञान हो जाए, अथवा तो गुरु के हृदय में जो नारायण तत्व है उसकी कृपा से यही ज्ञान हो जाए, तो फिर मजदूरी करने की लंबी जरूरत क्या पड़ती है।
ब्रह्मलोक में जाएं और ब्रह्मा जी के भोग भोग और ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मलोक विलय हो जाए उस समय ब्रह्मा जी उपदेश दे और आप साक्षात्कार करें और आप ब्रह्म में लीन हो जाए ब्रह्मलोक के दायरे से पार हो जाए उसकी अपेक्षा यही दायरे से पार हो जाए तो क्या घाटा पड़ता है। इसलिए हम गुरुओं को कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु कम सुखो गुरुओं का नाम नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अथवा ऐहिक विद्या पढ़ाने वालों का नाम नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ब्रह्म विद्या योग विद्या से भी और एक छलांग आगे दिला दे ब्रह्म विद्या ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले महापुरुषों का ही नाम है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म अस्मि से गुरुवेदना ब्रह्मा के नहीं हमारे अंदर आत्मभाव के सत्ताते हैं विष्णु के नहीं उनका पालन करके उन विचारों को पुष्ट करते हैं और भगवान की जैसे ज्ञान के नेत्र से प्रलय करते हैं जीवनों को भंग कर देते हैं ऐसे ही हमारे अंदर वे अभ्यास को परिच्छिन्नता को भस्म कर देते हैं ऐसे जो ब्रह्म देवता है उनको हमारा निस्तार है तस्मै से गुरवे नमः। ऐसे पुरुषों के उपदेश को सुनकर मनन करना चाहिए अगर पात्रता है तो श्रवण मात्र से बात समझ में आ जाएगी लोभ हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा जैसे राजा कनक पात्रता थी लोभ हो गया। अगर सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है तो फिर मनन करना चाहिए अब हो जाना चाहिए ज्ञान अगर मनन से भी नहीं होता है तो मनन करते करते उसी विचार में डुबाते जाओ अपने को तो फिर ज्ञान की तैयारी थी गुरु भी नहीं होता है तो गुरुमुख से फिर महावाक्य का विचार किया जाता है तत्वमसी वह तू है वह तू था नहीं तू बनेगा नहीं सत्यम बभुआ ऐसी बात नहीं सत्यम भविष्यति ऐसी बात नहीं चार वेद के चार उपनिषदों के चार एकदम फाइनल उपदेश देने वाले चार एकदम प्रेम महावाक्य है उसका अर्थ तो ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते उन चार वेदों के चार महावाक्य जीव को अपनी असलियत का बोध कराते तत्वमसि छंदोग की छंदोग उपनिषद में आया तत्वमसि तत्वम असि जो सत है चित्त है आनंद स्वरूप है सृष्टि के पहले था सृष्टि के समय है और पढ़ने के बाद भी रहेगा उसी को तत्व बोलते हैं वो तत्व तू है तत्व तत्व मैंने तू असि मैंने है था नहीं है उसी को नानक जी ने कहा आद सत्य जुगांत सत्य है भी सत्य नानक हो तो भी सत्य उस सत्य का बोध के लिए क्या कहा नानक जी ने गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा स्वर्ग का वैंकुट का नहीं सारा गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा जो सारा अमृत है जिसके खजाने से सदियों से युगों से बसता ही चला आ रहा है जो कुछ मधुर है उत्पत्ति का सामर्थ्य जहां से बसता ही आ रहा है स्थिति का सामर्थ्य जहां से निखरता ही आया है प्रलय का सामर्थ्य जहां से आया यहां से प्रेम दया करुणा उत्साह आनंद मधुरता निखरती आती बक ही रहा है उस अकूट खजाने से बता आ रहा है बट रहा है बटता रहेगा फिर भी एक तिनखा भी उसमें से नहीं कूदता वह पूर्ण तत्व तू है वह पूर्ण तत्व चैतन्य आत्मा तू है तू हाजमास का इंजन नहीं है तू कौल मौल नहीं तू हिंदू मुसलमान नहीं तू मनुष्य या पशु पक्षी नहीं लेकिन सारे जिससे उत्पन्न होते हैं जिसमें स्थित होते हैं और जिसमें लय हो जाते हैं बात तू है ये उपदेश खान वेद खांडव के उपनिषद अभी एक वेद का उपनिषद का महावाक्य है। वेद में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक आवांतर वाक्य और दूसरे महावाक्य। आवांतर वाक्य क्या है कि भगवान है, ईश्वर है, उसको पाना चाहिए, वो यहाँ है। वो स्कूल के विद्यार्थियों को जैसे कॉलेज के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे आवांतर वाक्यों से साधकों को तैयार किया जाता है तत्व समझने के लिए। स्कूल के पहले बाल मंदिर होता है, बाल मंदिर में स्कूल की योग्यता के लिए तैयार किया जाता है। ये कर्मकांड के वचन, ये आवंतर वचन है। तो होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, परहित करना चाहिए, इससे अंतःकरण का निर्माण होता है। तो फिर चले आओ वेद के दो विभाग की दुनिया में। एक होता है प्रमाण विभाग वेद में और दूसरा होता है निर्माण विभाग। अंतःकरण का निर्माण करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, स्मरण करना, ये तय करना धरना, तो उसको तो मेहमान के बिल्कुल मेहमान के ही तो होगा। मैं ब्राह्मण कर्म करने के पहले संकल्प करना पड़ता है, गंगा स्नान करा के अहम स्नान हम करी से अमुक गोत्र उत्पन्न भारत में क्षेत्र है, दान हम करी से तो मैं तो करता हूँ। अब देखना निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग में क्या अंतर है। कर्मकांड मैं देह हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक माए बाप का पुत्र हूँ, अमुक गोत्र का हूँ, ऐसा देह को मैं मानकर कर्म की शुरुआत होती। शादी करोगे तो जिसका नाम है वो और करने वाले का विचार, कहते मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें तृप्त करने को स्वाद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा अमुक अमुक और ये कर रहा हूँ। तो निर्माण विभाग में तो अपने को कर्ता मानकर अशुद्ध कर्तृत्व से बचकर शुद्ध कर्ता बनना पड़ता है, ये निर्माण विभाग है। जीव की अनादि काल से ये धाराएं अशुद्ध और शुद्ध मन की धारा है। तो अशुद्ध में आना आसान होता है, जैसे पहाड़ी से कंकड़ को गिरना आसान होता है, ऊपर से पानी को गिरना आसान होता, नीचे फ्लो होता होना आसान होता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने में पंपिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो पतन होना ये स्वभाव है, इंद्रियों के तरफ मन आना, मन के पीछे बुद्धि का लुढ़क जाना और बुद्धि के पीछे स्वयं बुद्धि का आधार लुढ़क जाए, ये आसान। लेकिन इंद्रियों को मन में लाना, मन को बुद्धि में लाना और बुद्धि को अपने में ले आना, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। तो पहले सीधा अगर कोई कह दे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ, पति स्थिति पर लैसा साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, अमर हूँ, तो नहीं जमेगा। बाल मंदिर वाला लड़का अगर कह दे कि आई एम द प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो नहीं बनेगा। बाल मंदिर से स्कूल होते हुए अगर हमें हो जाता है तो प्रोफेसर ही काम करता, तो बिल्कुल वही बालक था जो प्रोफेसर है, बिना बालक हुए प्रोफेसर नहीं होता। ऐसे ही अंतःकरण की मलिन वृत्तियों को हटाकर धीरे धीरे अंतःकरण का निर्माण करता करता जब ऊंचाई पर आता है तो वेद के प्रमाण वाक्यों को समझ कर जग जाता है। अब चलो इस शरीर की स्थिति में चले आए, थोड़ा वेद से थोड़ा हम लोग नीचे आ रहे हैं। हमारा जो शरीर दिख रहा है इसके अंदर पांच परतें हैं, इसे पांच कोष कहे जाते हैं। जैसे बादाम रोगन पर पांच परतें होते हैं, बादाम के फल पर पहला छिलका कोमल, उसके अंदर गिरी, फिर उसके अंदर कठोर बादाम बीज रूपी, फिर उसको तोड़ो तो लाल कवर होता है बादाम के ऊपर, उसके अंदर सफेद गिरी होती है, उसके अंदर रोगन होता है बादाम का तेल। बादाम के तेल पर पांच कवर है, ऐसे ही तुम पर भी, तुम्हें बादाम के तेल तो कुछ नहीं है, तुम तो वह हो कि तुम पर ऐसे पांच कवर लगे। इसको अन्नमय कोष कहते हैं, जो देह बॉडी दिखता है ना, जो डॉक्टर लोगों को दिखता है, डॉक्टर बैठे सर जो डॉक्टरों को दिखता है जांच के जगत में आ जाता है वो सब अन्नमय कोष है। आपकी जानकारी में जो भी आ जाता है वो अन्नमय कोष है। लेकिन ये आपको स्वीकार करते हैं कि अन्नमय कोष से भी कुछ और है, दर्दी का मन जैसा होता है ऐसी दवाइयां हमारा असर करती है। दर्दी की श्रद्धा नहीं तो हमारी बढ़िया दवाई भी बेकार हो जाती है, और दर्दी की तीव्र श्रद्धा है तो हमारी सारी दवाई भी चमत्कार कर देती है। तो मानना पड़ेगा कि अन्नमय कोष के अंदर दर्दी की प्राण शक्ति भी डिपेंड करती है। अगर दर्दी बीमार पुराना है बुढ़ा है तो उसको घाव भरते अथवा ऑपरेशन का घाव भरते और बीमारी दूर करते करते दम निकल जाता है। अब दर्दी का अगर यौवन है उभरता जीवन है 36 साल के पहले पहले का जीवन है तो उसको फायदा ठीक होता है, जल्दी से होता है। तो अन्नमय कोष ये हमारा बाहर का है, उसके भीतर है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष के भीतर है मनोमय कोष। तो अन्नमय कोष जुड़ा है 5 ज्ञान इंद्रियों, ये 5 तत्वों से बना। इसके अंदर प्राणमय कोष है, 5 कर्म इंद्रिय और प्राण के संयोग को प्राणमय कोष कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय और मन के संयोग को मनोमय कोष कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि के संयोग को विज्ञानमय कोष कहते हैं। और उसके भीतर है आनंदमय कोष। जैसे बर्फ के टुकड़े को एक आप पत्रे के अथवा एल्यूमिनियम की डिब्बी में रखते दो, डिब्बी में डिब्बी, उसमें डिब्बी डिब्बी में, ऐसी 5वीं डिब्बी थोड़ी ठंडी हो रही है तो 4वीं डिब्बी का उसको स्वास्थ्य है, और 4वीं को 3वीं का ऐसे समय के ठंडक जो 5वीं डिब्बी तक आ रही है वो बर्फ की है। ऐसी अन्नमय कोष की अनुकूलता से जो सुख मिल रहा है, हर सुख आत्मा का, जैसे सोफा पे बैठे अथवा बच्चे को हाथ घुमा दिया उसके कोमल शरीर को, अथवा बच्चे को किस कर लिया है, स्पर्श का सुख जो भी है, जो भी स्थूल फिजिकल शरीर को टच करके जो भी सुख होता है वो अन्नमय कोष से संबंधित सुख है। अन्नमय कोष से संबंधित सुख में अगर आसक्ति होगी तो बुद्धि जारी होती जाएगी, और बुद्धि जारी होगी तो फिर जारी योनियों में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां चित्रगुप्त उसको भैंस बनाओ, उसको गाय बनाओ, उसको कुत्ता बनाओ, दिन भर चिल्लाता रहता होगा, नहीं नहीं, गुप्त रूप से तुम्हारे संस्कार चित्रित हो जाते हैं, उसी को चित्रगुप्त का नाम दिया गया है। अब सब लोग ऐसी सूक्ष्म बात समझने के सक्षम नहीं होते, इसलिए कल्पना करके दिखाया गया कि मोर के पीछे से चित्रगुप्त सबका भाग्य लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। तो इतने इतने आदमी और एक एक सेकंड में लोग क्या क्या करते हैं, वो कैसे संभव हो सकता है? फिर भी संभव है, सिस्टमेटिक है कि आपके जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रकार से संस्कार को बढ़ोतरी मिलती रहती है। तो गुप्त रूप में, गुप्त रूप से आपके अंतःकरण में संस्कार अंकित होते हैं। तो अन्नमय कोष से संबंधित अगर सुख की लालच बनी रही तो उसमें भी विषय अलग है, कोई शक्ति है, तो अब उसको दूसरे जन्म में कहीं ब्राह्मण या कोई अच्छे कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं, उसकी वह आदत बनी है तो उसकी इच्छा होगी कि मुझे ये भोग मिले, ये भोग मिले तो इच्छा जहां से उसके वहां शुद्ध चैतन्य है। बुद्धि के 5वें का जो आधार है, तो इच्छा बनी के काम विकार भोगते भोगते आदत बन जाती, जैसे बीड़ी पीते पीते आदत बन जाती है, दारू पीते पीते आदत बन जाती है, चाय पीते पीते आदत बन जाती है, तो चाहे मिलेगी कि नहीं आश्रम में पहले सोच लेते हैं, जहां चाहे मिले उसका इलाज कर लेते हैं। तो एक उपाय है कि मनोबल दृढ़ करके चाय की आदत को तोड़ दे, और दूसरा उपाय है कि चाहे मिले, ऐसे जो भोग भोगने की आदत पड़ गई वो सूक्ष्म अंदर में चित्रगुप्त मन गुप्त रूप में संस्कार है, तो उसी आदत के अनुसार उसका अंतःकरण फिर ऐसे ही योनि में आता है। और जैसे आदमी मर गया तो उसका अंतःकरण आकाश में लिखा, फिर बरसात के द्वारा भूमस के द्वारा गिरा, वहां में जल फल में आया। अगर वो शक्ति है तो किसी मनुष्य के द्वारा मां के गर्भ में गया लेकिन रुकेगा नहीं, फिर वो मातृ के द्वारा बाहर जाएगा। और उसके काम विचार की वासना है तो प्रकृति से उसने एक देवी एक ढूंढ नाली में उसी अन्न को उसी वस्तु को तब वो खाएगा और ढूंढ बनकर वो आदमी आराम से चक्कर सुख लेगा, बकरा बनकर उसमें पड़ा रहेगा। इसी जड़ता होती है, बुद्धि की जड़ता है उन योगों में। अगर किसी की इच्छा है ध्यान भजन करने की या तप करने की तो ये मनोमय कोष विज्ञानमय कोष का है, तो जहां मनोमय विज्ञानमय कोष को पोषण मिले ऐसे किसी नाम श्री मतान जो है योग भ्रष्टों की गायते अच्छे घर धनवान श्रीमान अथवा कोई ऋषि के घर उसका जन्म होगा। तो अन्नमय कोष का सुख लेने की आदत हो गई तो समझो उसमें भी कैटेगरी होती अधिक अधिक पामरता से अन्नमय कोष का सुख लेता है तो फिर वो वृक्ष बन जाता है, उससे थोड़ा कम लेता तो भूंड आदि बन जाता है बकरार। अन्नमय कोष की अपेक्षा प्राणमय कोष में आया तो वो अन्नमय कोष की अवस्था से उनकी अवस्था है, ईश्वर के करीब की अवस्था है। प्राणमय से मनोमय और ईश्वर के करीब है, मनोमय से विज्ञानमय और ईश्वर के करीब है, विज्ञानमय से आनंदमय कोष ईश्वर के और करीब है। अगर साधन भजन करते करते अगले जन्म के इस जन्म के कुछ योग्यताएं विकसित हुई है और आप आनंदमय कोष तक पहुंचे हैं तो आप उपदेश सुनने मात्र से तत्व में पहुंच जाएंगे। जन्म की यह स्थिति थी, परीक्षक की यह स्थिति थी, इसलिए परीक्षक ने उपदेश सुना भागवत का तो उसे साक्षात्कार हो गया, दूसरों को नहीं हुआ, दूसरों ने मनन नहीं किया। अन्नमय कोष शरीर से अथड़ाया, थोड़ा मनन हुआ नहीं हुआ तो नित्याभ्यास नहीं हुआ, तो प्राणमय कोष में मनोमय कोष में विज्ञानमय कोष में नहीं पहुंचे, आनंदमय कोष में नहीं पहुंचे। तो सत्संग से क्या होता है कि जो अन्नमय कोष में लोग जी रहे वे भी सत्संग सत्संग के रेंज में आ जाते हैं, तो सत्संग के रेंज में प्राणमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष में जिए हुए लोग आते हैं तो उनके वातावरण और वाइब्रेशन में और सत्संग करता संत की दृष्टि में प्रभाव होता है। तो जो अन्नमय कोष में साधारण पतित जीवन जी रहे हैं वे लोग भी अगर सत्संग में आ जाते हैं तो अनजाने में वे प्राणमय कोष में पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको पहले के सुखी जीवन की अपेक्षा अन्नमय कोष के सुख जीवन की अपेक्षा सत्संग में कुछ ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि कुछ निकट आ गए बर्फ की डब्बी के करीब आ गए। इसलिए बड़े बड़े भोगी भी अगर योगियों के रेंज में आ जाते हैं तो महसूस करते हैं कि आज तक जो खाया पिया भोगा कोई था नहीं, अरे साक्षात्कार तो नहीं हुआ लेकिन जो भोगा उससे तो बढ़िया हुआ। सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि जल्दी से जल्दी आदमी को अन्नमय कोष से उठाकर प्राणमय में रख देता है, और प्राणमय कोष की योग्यता वाला आएगा तो सत्संग के वातावरण में मनोमय कोष में पहुंच जाएगा, और मनोमय कोष की योग्यता वाला आएगा तो विज्ञानमय कोष में पहुंच जाएगा। तो मुझको बहुत होगा कि हाँ लाभ हुआ मेरे अच्छा लगा, और विज्ञान वाला अगर आया तो वो आनंदमय कोष में पहुंच जाएगा, और आनंदमय कोष वाला अगर कोई कोई बन मिलता है वो आ गया तो बोलेगा कि अरे आज ये किया वो किया वह बाजी, लेकिन यहां जो मिला जनक ने कितना कितना किया अगले जन्म, लेकिन सुखदेव जी महाराज के जरा सा उपदेश मात्र से उनको जो मिला वो अद्वितीय था। उनको मिला ऐसा कैसा सुखदेव जी दूसरों को देते थे, जनक जैसा साक्षात्कार नहीं होता। तो आखिरी मंजिल तो ये है कि पांचों कोषों से बाहर जो चैतन्य धन अपना मैं है अपना स्वरूप है उसको अपना जान लेंगे। तो जितना जितना देह के साथ मन के साथ बुद्धि के साथ परिस्थितियों के साथ तादात्म्य होगा उतना उतना अपनी जानकारी अपना साक्षात्कार का काम देरी से होगा, और जितना जितना देह अभ्यास छोड़ने को तैयार होगा उतना उतना ये काम जल्दी होगा। अब पांचवी बुद्धि को छोड़कर तुम चौथी में आने को तैयार है तो काम जल्दी होगा, नहीं तो तुमको हटाने के लिए समझाना पड़ेगा मेहनत करानी पड़ेगी। तो अन्नमय कोष में जिसकी आसक्ति होती है उसको भोग ज्यादा अच्छे लगते और ऐसे आदमी को शास्त्र ने वेद ने विधि बताई अगर मांस खाना है तो हम इनकार करेंगे तो मानेगा नहीं, शराब पीना है लेकिन इनकार करेंगे तो मानेगा नहीं, अच्छा तो देवी को भोग लगाकर फिर खाओ। अभी अभी जो बकरा काट रहा है तो कम से कम देवी के मंदिर में जाएगा, देवी को प्रार्थना करेगा, मंदिर में जाते जाते श्वासोश्वास करेगा, प्राण में दोष में तो आएगा कम से कम थोड़ा, देवी को प्रार्थना।
स्वर्ग में हीरे मिलती है, शराब के चश्मे है। अगर मुसलमान धर्म में जन्म हुआ है तो मुसलमान संतों ने ये व्यवस्था महापुरुषों ने की है कि तुम अगर मरोगे नहीं तो विष्ट मिलेगा, वहाँ हीरे मिलती है परियां। यहाँ की तो स्त्री में क्या है, और उसके तो मुंह में थूक है, नाक में लीक है, और योनि में गंदगी, उसमें विकार भी क्या करते हो, बुढ़ापा आ जाता है, झुरियां पड़ जाती है, सुबह सुबह चमी में थूक और मरे हुए बैक्टेरिया की बदबू आ जाती है, तो उस स्त्री के शरीर में विकार की दृष्टि से क्या देखते हो, उसमें तो मालिक बैठा वो देखना चाहिए। और उसमें संयम करो तो स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं मिलती है, ऐसी हीरे मिलती है जो उनको बगासा नहीं आता, उनको ओरकार नहीं आता, उनके अपान वायु नहीं होता, उनको थूक नहीं होती, उनके लीप नहीं होती, ऐसी हीरे होती है, ऐसी हीरे होती जो उनके बच्चों बच्चों की शादी वादी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो काम भी करके बच्चों को जन्म दो तो 18-20 साल खिलाओ पिलाओ और फिर जमाइयों को संभालो और बहनों को संभाल संभाल के जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे जरा संयम करो तो वहाँ विष्ट मिलेगा, हूरे मिलेगी और शराब के चश्मे बहते हैं चश्मे। तो अब यहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए जिसने भेज दिया उसके मन को चला, तो ये उनकी कृपा हुई। पांचवी अवस्था के पंत में तो उससे हटाकर कुछ चश्मे तो ले आ रहे हैं। जो लोग परलोक को नहीं मानते, जो लोक लोकांतर को नहीं मानते, वे समझते हैं कि जो कुछ यहां भोग लो, तो जो अति भोगी हो जाते तो भोग में कहीं भी तसल्ली नहीं, तो भोग में बदलाहट होती है। पाश्चात्य जगत परलोक में नहीं मानता, वर्तमान में खा लो भोग लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत या पर्यंत जीवेत सुखे रहिए, और देह भस्मी भूतवा किसने देखा भोगो। तो वे लोग अति भोगी हो जाते, तो भोगने की आदत पड़ने से उनको फिर भोग में कहीं विश्रांति तो मिलती नहीं, एकाग्रता का तो दुनिया में जा नहीं सकते बेचारे, इसलिए उनकी चंचलता बढ़ जाती है, फास्ट लाइफ हो जाती है। फिर मकान बदलेंगे, जूते बदलेंगे, फर्नीचर बदलेंगे, गाड़ी बदलेंगे, अरे लाड़ी बदलेंगे, लाडे बदलेंगे, बदले चेंज और चेंज करने के बाद भी तसल्ली नहीं, आखिर सुसाइड करके मर जाते हैं चले। वे लोग धनभागी हैं जो सूक्ष्म जगत की बातों को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं। तो अन्नमय कोष में उलझा हुआ आदमी और परलोक को नहीं मानता है तो जब मर जाता है तो घनीभूत अवस्था में पहुंच जाता है। अत्यंत जो भोगी है वो पाषाण अवस्था को पा लेता है। आपके शरीर में चेतनता और जड़ता दोनों हड्डियां जड़ जैसी नहीं है क्या? हड्डियां जड़ है लेकिन चेतनता का संयोग है तो जड़ हड्डियां भी चेतन जैसी लग रही। ऐसे अंतर पर अत्यंत भोगी है तो वे जड़ीभूत को वृक्ष पाषाण आदि अवस्था को पा लेते हैं। उससे कुछ कम विकार है, कुछ कम जड़ता है तो वृक्ष आदि बनकर कुहाड़े चाहते हैं और ठहरे रहते वहां। उससे अगर कुछ कम आसक्ति है जगत की तो फिर पास हुए, उससे भी कुछ कम आसक्ति है जगत की तो फिर ऊंची कुछ योनी है, उससे भी कुछ संयम ज्यादा मनोमय कोष आदि में है तो फिर मन की धारणा के अनुसार स्वर्ग आदि में, मन की और धारणा ऊंची होती तो वैकुंठ आदि में, मन की और धारणा कुछ ऊंची बनती विज्ञान में कोष तक को कुछ अंश मिल जाते हैं परसेंटेज तो फिर ब्रह्मलोक में जाता है, और विज्ञान में कोष के परसेंटेज और ज्यादा मिलते हैं तो सीधा स्वर्ग आदि वैकुंठ में सीधा ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मा जी जब तक रहते तब तक ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य भोगने का उसको मौका मिलता है। ब्रह्मा जी से जैसा सामर्थ्य नहीं लेकिन भोग ब्रह्मा जी जैसे, जब महापर्वय होता है तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भोग भोगो जिस शरीर से, ये शरीर तो पांच भूतों के हैं, तीन भूतों के हैं, ये माया मात्र है, माया का दृष्टा तू है, तत्व मसी फिर सामदेव अपनी सत्ता अमृत बुलाए, और ब्रह्मा जी जिस पद को पालेंगे उस पद को वो पालेंगे। तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये पांचों कोषों को जो भी झलकें मिलती है आपके मन को,
जो जो बुद्धिमान है वो बढ़िया बात समझ के आनंद का अनुभव करता है, तो आनंद अपने स्वरूप का आया। वो भावुक है मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरु जी, गुरु जी को देखकर आनंद आता है, तो आनंद आया मनोमय कोष में। लेकिन आनंद आया तो वहां से, जो मनोमय कोष में जी रहा है भावना में, तो भावना वाले को सुख मिलता है। भोग में जो जी रहा है तो भोगी को जो सुख मिलता है, तो अन्नमय कोष में ठहर कर भोगी को सुख मिल रहा है, लेकिन सुख वहां का है। विज्ञानमय कोष में कोई जीता, कोई आनंदमय कोष में जीता, बुद्धि बुद्धि से परे बस बैठ गया, कोई ही संकल्प अवस्था आ गए और आनंद आ रहा है। आनंदमय कोष का आनंद आ रहा है। आनंदो ब्रह्मो ब्रह्मेति परमात्मनो इति वेदांत में जो भी आनंद आता है वो परमात्मा का है। तुम चाय पीते जो मजा ले रहे, तो मजा परमात्मा का है, चाय का नहीं। एक आदमी ने भांग का गिलास कान पर भर दिया, इसमें लगा कि अरे भांग तो कह दे, तेरे मस्ती कहां से आए, इतनी मस्ती क्यों देती, कहां से लाती। भांग ने कहा पागल, मस्ती तुम्हारी है, मेरे में मस्ती होती तो ग्लास मस्त हो जाता और घोटने के साधन मस्त हो जाते, मस्ती तुम्हारी है, ठोकते मुझ में हो। तो शराब में अगर मस्ती होती तो शराब की दुकानें ना टूटती, बोतलें ना टूटती। शराब में मस्ती नहीं है, तो मस्ती शराबी की है, लेकिन गुलाम हो जाता है शराब का। मस्ती स्त्री में नहीं है, मस्ती पुरुष के शरीर में नहीं है, मस्ती काम में नहीं है, मस्ती तुम्हारी है, लेकिन काम के द्वारा तुम एहसास करते हो, इसलिए विकारों के शिकार हो जाते हो। मस्ती सिनेमा के पर्दों में चलचित्रों में नहीं है, अगर चलचित्रों में मस्ती होती तो चलचित्रों की थिएटर में जो नौकरी करते वो छुट्टी लेकर कहीं जाते नहीं, बैठे। मस्ती हवाई जहाज में बैठने में नहीं, लेकिन जो देहाती है वो लोग तो मनोतियां मानते कि हवाई जहाज देखने को मिल गया तो जीवन का उच्च नीचा प्रसंग है, और हवाई जहाज में बैठने को मिल गया उन देहाती व्यक्तियों को तो समझे जीवन भर बात करेंगे कि मैं बॉम्बे से अहमदाबाद बाय एयर गया था, प्लेन में गया था। अगर प्लेन में मस्ती होती तो प्लेन में सर्विस जो करते हैं वो छुट्टियों के लिए ट्राई नहीं करते। मस्ती वहां नहीं है, लेकिन आप आकांक्षा अपनी मस्ती वहां भर देते हैं कि प्लेन में बैठूं तो मजा आ जाएगा, ये खाऊं तो मजा आ जाएगा, यहां जाऊं तो मजा आएगा। आप अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और अपना हस्ताक्षर करके फिर बंध जाते हैं, स्वामी होकर फिर गुलाम आप ही हो जाते हैं। शराबी सोचता है शराब हो, ठंडी हवाएं हो, मांस मदिरा हो, आ अपना हस्ताक्षर करके और ऐसी अवस्था है कि अरे आई एम वेरी हैप्पी, लक्की लक्की वेरी लक्की। वही की वही चीज अगर साधक के सामने धर दो तो कहेगा कि आज कौन सा दुर्भाग्य है कि मेरे को मेहमानवाजी में ये चीजें, हमने तो ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि तुम ये पाप मेरे सामने रखो, वो नाराज हो जाएगी। अगर वस्तु में मजा होता तो जो शराबी कबाबी को जिन वस्तुओं को देखकर आनंद आता है, वो वस्तु सज्जन आदमी को भी तो आनंद देना चाहिए ना। वस्तु में सुख नहीं, सुख तुम्हारा है, तुम बांटते हो, बिखेरते हो, अपने को कोसते रहते हो, अपने को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हो और फिर पकड़ कर हा मिल गया, हा मिल गया, कहीं रूप ने अपने को फेंक दिया, ये रूप देखो आ हा हा, तो अपने को वहां तोड़ के फिर दिया लिया, कहीं शब्द में अपने को तोड़ा, कहीं स्पर्श में अपने को तोड़ा, तो अपने को खंड खंड करके फिर वो खंड टुकड़े बिखेर एकत्रित करके और आनंद रहेगा। जैसे एक रुपए के 20-20 पैसे वाले सिक्के 5 कर दिए और अलग अलग जगह पर फेंक दिए और फिर था मेरे को 20 पैसे मिल गए, ओह मेरे को 40 पैसे मिल गए, ओह मेरे को 60 पैसे मिल गए, अरे तेरा ही तो रुपया था। तोड़ने का उठाने की मेहनत पड़ी और मेरा रुपया था, ये जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक उसी में तो राजी रहे। एक राजकुमार ने खीर खाने की इच्छा व्यक्त की माँ के आगे, माँ ने कहा बेटे अपनी जो दो गये हैं अभी भी आएगी, बाजार का दूध क्या पता कौन कैसा दोगा, कैसा आदमी होगा, बस अब एक दो तो भी आई दूसरी भी आएगी, दो चार दस दिन दूध बाहर रवाना कर देंगे, फिर इन्हें लायक दूध होगा ना तो खीर बना दो। बच्चा रोज खीर खाने की इच्छा कर, हाँ बेटा अभी दो चार दिन दो। माँ ने खीर बनाई चांदी के बर्तन में अच्छे ढंग, घर के लोग कहेंगे बाल जी बच्चा स्कूल से आया और उसको चांदी के कटोरे में सुवर्ण के चम्मच से खीर माने परोस। वो बोलता है ये नहीं मेरी रकाबी में खीर दो। मां बोलती बेटे ये भी तो कटोरा तेरा। बोले नहीं मेरी जो फूल छाप जो रकाबी है न वो दो मेरी रकाबी। वजीर कहता कि केवल तेरी वो रकाबी नहीं कटोरा भी तेरा है और हार नरेश ये राज्य भी तेरा है हम भी तेरे। बोले नहीं मैं नहीं खाता मेरे को तो इसमें दो मेरी रकाबी में दो। अब मेरी रकाबी में जो आए वो खीर मेरी है। अभी वो खीर पर आई ऐसे जो मेरी बुद्धि में आ जाए मेरा वो मेरा है और अभी बाकी सब पर आए। अरे सारा विश्व तेरा है राजकुमार सारा ब्रह्मांड तेरा है ब्रह्मा जी भी तेरे हैं और विष्णु भी तेरे हैं शिव जी भी तेरे हैं देसी भी तेरे हैं और परदेसी भी तेरे हैं सूरज भी तेरा है चांद भी तेरे हैं सितारे भी तेरे हैं दरिया भी तेरे हैं और दरिया के किनारे भी तेरे हैं। तू वो राजकुमारों का राजकुमार है तत्त्वमसी तू ये चैतन्य आत्मा है। लेकिन जो हमारी बुद्धि में आ जाए जो मेरे अंतःकरण में आ जाए जो मेरे अहंकार की सीमा में आ जाए वो मेरा है। इसका नाम है अज्ञान। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवा। अज्ञान से आवृत हो गया ज्ञान इसलिए भी मैं हित हो गई सिद्धि में फिलहाल। जब तक सृष्टि है सृष्टि का एक कण है तब तक आपका नाश नहीं होता और सृष्टि का एक कण न भी रहे फिर भी आपका नाश नहीं होगा। आप वो हैं लेकिन अभी ये रकाबी जीवित है तो मैं जिंदा और रकाबी टूटी तो हूँ मेरा सर्वस्व चला गया। जैसे राजकुमार की रकाबी गई तो राजकुमार का सर्वस्व गया। नहीं नहीं रकाबी थी तभी भी राज्य में थी और टुकड़े टुकड़े हुई तभी भी राज्य की भूमि में है और पूरा राज्य तेरा है। ऐसे ही तेरा पूरा स्वरूप है सृष्टि हुई तभी भी तुझ में है स्थिति है तभी भी तुझ में है। तो ऐसी चीज है इस प्रकार का जब गुरुओं की कृपा से बोध हो जाता है तो धीरे न द्वेष्टि संसारम अष्टावकर कहते हैं धीर के संसार की किसी अवस्था से द्वेष नहीं करता। धीरे न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति फिर वो आत्मा को चाहता नहीं आत्मा तो स्वयं है वो। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ति विनिर्मुक्ता हर्ष और अमहर्ष से ठीक ढंग से मुक्त हो गया। ये पांच कोषों के साथ तादाद में था तभी बंधन था। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न जीवती जैसे आज तक अपन लोग मरते आए हैं और जीते आए हैं ऐसा वो मरता भी नहीं जीता भी नहीं। लोभी मरता जीता कब है लोभी को घाटा पड़ता तो मर गया और नफा होता है तो जी गया। अहंकारी की हार होती है कुर्सी में तो मर गया और कुर्सी मिल गई तो जीवन हो गया। मोहित को परिवार मिल गया तो शादी विवाह हुआ कि हार जिंदगी है और परिवार इधर उधर हो गया कि हार मर गया। हार भक्त को ये शरीर है तो जिंदा है शरीर छो गया तो मर गया अथवा तो भगवान की भक्ति हुई तो जीवन है और भक्ति छूटी तो मृत्यु है। इन ज्ञानी का इन परिस्थितियों से जीवन मरण नहीं होता। देह रहा तभी भी ज्ञानी जिंदा है और देह नहीं है तभी भी ज्ञानी जिंदा है। अनुकूलता है तभी भी ज्ञानी जिंदा है और प्रतिकूलता है तभी भी ज्ञानी जिंदा है। क्योंकि ज्ञानी का जीवन वास्तविक जीवन है और अज्ञानी का जीवन थोपा हुआ जीवन है इसलिए बार बार झुलसता रहता है। ज्ञानी का मतलब क्या कि जो पांच डब्बियों को शीतलता दे रही है बर्फ उस जो ऐसे जो ब्रह्मांड को पांच भूतों को चेतना मिल रही है जिस चैतन्य आत्मा से उसको मैं रूप से जिसने ठीक से जान लिया। ऐसे सुखदेव जी महाराज को रास्ते जाते कोई कंकड़ पत्थर उलेले खेल रहे हैं पागल गिंद फिर भी चित्त में शोभ नहीं होता और सोने के सिंहासन पर परिषद जैसे आदर से उनको बैठाते तभी भी चित्त में अहंकार नहीं आता क्योंकि उनका जीवन आनंदमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय को उससे पार में जी रहे हैं। तो परीक्षक को उपदेश दिया परीक्षक को उपदेश मिला और ज्ञान हो गया मनन निपज्ञापन हो गया साथ साथ में। तो परीक्षक ने तक्षक को आते समय देखा कुछ डरे नहीं और तक्षक का प्रभाव इस शरीर से पड़ता है पांच भूतों के शरीर पांच भूत पांच तत्वों से बने हुए तक्षक का शरीर का प्रभाव इस पांच भूत के पुतले पर पड़ेगा लेकिन मुझ पर नहीं पड़ेगा। इन पांच भूतों को सत्ता जो देने वाला सत्य है वो मैं ही, ऐसा परीक्षित को साक्षात्कार हो गया। तो मन की मलिन वृत्ति और शुद्ध वृत्ति, तो मलिन वृत्ति को रोकने के लिए शुद्ध वृत्ति का अभ्यास किया जाता है। शुद्ध वृत्ति जब दृढ़ होती है तो आनंदमय कोष विकसित होता है। मलिन वृत्ति दृढ़ होती है तो अन्नमय कोष में आदमी हिलकता रहता है। शुद्ध वृत्ति का पोषण किया जाता है, अशुद्ध वृत्ति को दबाया जाता है। ये बिना तो रह नहीं सकते, उसमें शुद्ध करने में ऋतु यज्ञ दान तप सेवा स्मरण पूजा धारणा ध्यान, ये सब शुद्ध वृत्ति को जगाने के लिए, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। जब आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष में पहुंच गए तो फिर गुरुओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मजे की बात है कि आध्यात्मिक जगत में जो कर्मकांड है, सेवा पूजा है, ये बाल मंदिर के गुरुओं तो बहुत मिल जाते हैं। वो आनंदमय कोष से पार ले जाने वाले गुरु बहुत मुश्किल से मिलते, और आनंदमय कोष से पार जाने वाले विद्यार्थी भी नहीं जैसे मिलते। इसलिए आनंदमय कोष से पार ले जाने वाले गुरुओं को बाल मंदिर का काम से लेकर हाईस्कूल का काम से लेकर प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए कभी कीर्तन करो, कभी ये सेवा करो, कभी वरदादा को फेरा करो, कभी माला करो, ये सब हाईस्कूल बाल मंदिर चला दे सकते ताकि हमारे कॉलेज की ग्राहकी चालू हो जाए। भैया नारायण 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 नारायण। सुखदेव जी एक बार उपदेश देकर चले गए, अष्टावक्र ने थोड़ा उपदेश दिया, नहीं हो गया। रोज रोज थोड़े ऐसे माइक लगा के थोड़े चिल्लाया जाता है, सत्यवेता के लिए तो बस गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशया, गुरु मौन है शिष्य के संशय निवृत्त हो रहे हैं। गुरु युवान है वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शिष्य वृद्ध है। गुरु युवा शिष्य वृद्धा, गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशया, ऐसी आध्यात्मिकता। आनंदमय कोष के बाद वाणी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा उपदेश दिया और अपना संकल्प की कृपा बरसा दी, ये हो गया काम। जिनको अगर अपना उद्धार करना है तो यत्न करके मलिन वृत्ति से बचे और शुद्ध वृत्ति बढ़ाए, और शुद्ध वृत्ति में भी शुद्ध वृत्ति से भी फिर जुड़े न वृत्ति उठती अंतःकरण में, और अंतःकरण एक अंतःकरण से अपने को जोड़ के क्या रखना, हजारों हजारों अंतःकरण जहां से पैदा हो के लीन हो जाते उसमें चले आओ। जब तक अंतःकरण में रहेगा तब तक तो अंतःकरण में हिलचाल होगी, अच्छा होगा तो उस दिन अपने को सुखी मानेगा, भाग्यशाली मानेगा, बुरा होगा तो फिर अपने को पापी मानेगा, फिर अपना कभी प्रोग्रेस दिखेगा, कभी ले दिखेगा, कभी डाउन दिखेगा। क्योंकि अपने को नहीं देखा, जैसे आप जलाशय में चेहरा देखते हैं तो क्या आपको चेहरा स्थिर दिखेगा, मिलता ही रहेगा। ऐसे आप अगर अपने को हिंसाकर्म और शरीर में बैठ के अपने को देखेंगे तो आपको कभी लगेगा कि मच्छे हैं, कभी लगेगा कि मेरे जैसा काफी है नहीं, कभी लगेगा कि मैं विद्वान हूँ, सब बुद्धिमान हूँ, कभी लगेगा कि मैं उसके अपेक्षा में मूर्ख हूँ। हकीकत में आप न मूर्ख है न विद्वान है, न अच्छे है न बुरे हैं, आप तो आप ही हैं। इसका बोध हो जाएगा, लेकिन टिक जाओ, बोध तो मिल रहा है, टिक जाओ बस। अमुक दर्जे पर पहुंचू, अमुक अवस्था पर पहुंचू, सेठ होकर जी हूं, साहब होकर जी हूं, कलेक्टर हो जाऊं, सचिव बन जाऊं, ये आप बुद्धि के साथ जुड़कर बन जाते हैं। बुद्धि में अहिक संस्कार जैसे पड़ते हैं आप उसको ऐसा मान लेते हैं। बुद्धि में डॉक्टरी संस्कार पड़े तो आपने अपने को डॉक्टर मान लिया, कोई वो पूछो किसी को तुम कौन हो, मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता हूँ वकील हूँ, कोई बोलता हूँ बनिया हूँ, मानव का नाश कर दिया, छोटी छोटी लहरें पकड़ रही है, पहले भी मानव है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, नहीं पहले तो मनुष्य है, और मनुष्य के पहले तो जीव है, और जीव के पहले तो चेतन आत्मा है यार, तो आत्मा है कहाँ छोटे दायरे में चला आया। तो शाम वेद की छांडे जितनी सब कहती कि तू वही है चैतन्य आत्मा तो अहम ब्रह्मास्मि वेदक वह ब्रह्म है प्रज्ञानम ब्रह्म बुद्धि के द्वारा जो देखता है बुद्धि की बदले आंख से जो देखता है वो ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म है तो चार वेद के चार महावाक्य चार उपनिषदों के चार महावाक्य तो जो आनंदमय कोश में है वो महावाक्य का गुरु मुख से श्रवण करके उसका बाल त्याग लक्षण से मैं तुम ब्रह्म है जिसका मतलब नहीं कि हर माह से तुम माना जो पांच कोशों से परे तीन गुणों से परे वो तुम लक्षण होते तो तीन जहती लक्षण अजहती लक्षण भाग त्याग लक्षण तो महावाक्य जहती अजहती भाग त्याग लक्षणों से समझे जाते तो इसमें महावाक्य संबंध में भाग त्याग लक्षण की जरूरत है जहती लक्षण क्या होता है अरे तो लाल जीत गया अब लाल जीत गया तो लाल रंग नहीं जीता अब मिलाना पड़ेगा कि लाल घोड़ा जीत गया गंगा में वो गांव है ना वहां से दूध ले आता होगा तो गंगा में गांव तो बैठे पानी में गांव नहीं है गंगा में गांव मना गंगा को इस विशाल बैठने कोई खाली जगह है वहां छोटा मोटा बसेरा है वहां से दूध लाना जैसे मां कहती बच्चे को कि मैं कथा में जा रही तो चावल सफा कर लेना चोखा वेणीनाथ के चोखा वेणीनाथ लोट बड़ी नाथी अब वो आटा नहीं पीसेगी धूम पीसेगी मां तो कहेगी आटा पीस लेना आटा पीस डालना वो आटा नहीं पीसेगी धूम पीसेगी चावल बीन लेना वो चावल नहीं बीनेगी पत्थर बीनेगी ठीक है ना ऐसे ही जैसे लगता है गाड़ी मुंबई में पहुंचती है ये बोरेवली आई नहीं गाड़ी बोरेवली में आई लेकिन कहना पड़ता कि बोरेवली आया सूरत आया नहीं गाड़ी सूरत में आई तो ऐसे ही तत्वसी महावाक्य तो अयम आत्मा ब्रह्म है या प्रज्ञानम ब्रह्म है ये जो उपदेश है इसमें लक्षण व्यक्ति से गुरु समझाते कि इस प्रकार से यह है वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी वह अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है तो फिर मेरा हुक्म तो क्यों नहीं चलता है मैं कह दू कलेक्टर ये करे तो कलेक्टर थोड़ा करेगा तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी कैसे नहीं है मैं जब कहूँ कलेक्टर ये करे तब तो पता चलेगा कि हाँ इस जिले का तो स्वामी है अब अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी और कलेक्टर चीफ मिनिस्टर तो हमारी बात मानते नहीं तो तू बुद्धि में आकर अपनी बात मनवाना चाहता है गुरु तेरे को बुद्धि से पार तत्व में निहार के कहते हैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तो तुम वहां पहुंच जाते बोले अच्छा तो मैं भगवान हूं ब्रह्म हूं आत्मा हूं चैतन्य हूं तो मैं तो पता से नहीं चलता अच्छा भाई तू चैतन्य नहीं चले ये शरीर है तुमने कल जो रोटी खाई थी उसका रस कहां कहां पर है और रक्त कितना बना पता है बोले नहीं पता फिर भी तेरे में तो है तेरे सिर में बाल कितने हैं पता है नहीं फिर भी तेरे में है रोम को कितने हैं पता है कि नहीं पता नहीं फिर भी तेरे में है ऐसे ही बुद्धि को पता चले चाहे न चले फिर भी तुम्हारे में है ऐसे ही ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं तुमको पता चले चाहे न चले ऐसे ही तुम्हारे चैतन्य स्वभाव में सब कुछ है बाहर नहीं है लोग समझते हैं कि हमारे शरीर में हृदय है और हृदय में परमात्मा है तो शरीर बड़ा उससे हृदय छोटा और उससे भी परमात्मा छोटा हो गया जैसे घर में गिलास और गिलास में लड्डू घर में गिलास गिलास में लड्डू तो लड्डू बड़ा कि गिलास बड़ा घर बड़ा कि गिलास बड़ा बोले घर बड़ा लड्डू बड़ा कि गिलास बड़ा बोले गिलास बड़ा लड्डू तो छोटा हो तो भगवान इतना था जरा सा नन्ना भगवान क्या करेंगे जो हमारे शरीर में हृदय और इस हृदय में भगवान को इतना मतलब क्या भगवान बेचारा हमारा कैसे भला करेंगे नहीं नहीं ये मधुग्रा भगवान नहीं है ये इसमें भाग त्याग लक्षण करना पड़ता है हृदय में ईश्वर है इतना हृदय और जरा सा ईश्वर है नहीं समझना पड़ेगा कि हृदय में उस अपने ईश्वरत्व की अनुभूति होती है इसलिए कहा गया हृदय में ईश्वर है जैसे शरीर के तमाम अंगों पर तुम मिठाई मलो कभी मिठास नहीं आएगी। रसगुल्ला तुम रबर डालो गुलाब को तो भी मीठा नहीं लगेगा। रसगुल्ला का स्वाद लेना है तो जीव पर ही लाना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव करना है तो हृदय नहीं होता। इसलिए बाहर भटकने की जो अन्नमय प्राणमय कोषों में आदत है उसको बताने के लिए कहा कि ईश्वर हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन पुष्पति। ईश्वर सब भूतों के हृदय में है, सब भूतों के हृदय में है। तो पौधे के हृदय में भी ईश्वर सत्ता, इसलिए फूल में सुगंध ले आता है, जमीन से रस खींच सकता है, पेड़ के गहराई में पेड़ के हृदय में भी ईश्वर सत्ता काम करती ईश्वर है। इसलिए तो अपना खुराक ले आता है और बच्चे पैदा कर देता है, बीज पैदा कर देता है। पक्षियों के हृदय में भी ईश्वर है, इसलिए किलोल करते हैं। ऐसे जल के भीतर भी, जल के हृदय में भी परमात्मा है, इसलिए उसका रस आता है। शब्द है पुरुषम निशु, पुरुषों का शब्द आकाश में जो शब्द है ना, वो भी अचल। शब्द का नाश नहीं होता, जब शब्द का नाश नहीं होता तो तुम्हारे तन का भी नाश नहीं होता, रूपांतर होता है। रूपांतर जो है नाम बदलता है, रूप बदलता है। नाम और रूप जो बदलता है उसको माया बोलते हैं। जिसकी सत्ता से बदलता है, जिसमें बदलता है, जिससे बदलता है, उसको चैतन्य आत्मा बोलते हैं। तो बचपन का शरीर नहीं है, बदल गया, लेकिन बचपन के शरीर को देखने वाले तो तुम रहे। यौन बदल गया, यौन की बुद्धि बदल गई, लेकिन यौन की बुद्धि को विचारों को देखने वाला तो अबदल है। जो अबदल है वो तुम हो, और जो बदलता है माया। तो ऐसा शुद्ध वृत्ति का अनुसंधान करके, नियमित अभ्यास करते हुए अपने देह अभ्यास को छोड़कर स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। नहीं तो फिर कभी चिड़िया बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी कुछ बन गए, न जाने कितने जन्मों से कहते आए। और हर जन्म में मित्राचारी ये सब एकत्रित किया और भोग भोग अंत में देखो तो ठन ठन पाल। इस शरीर को कितना खिलाया पिलाया घुमाया, इसके लिए मकान जो रखे, मृत्यु का झटकाया फिर कराया और शरीर को जला दो। जिसके लिए इतनी मजदूरी की, जिस शरीर की फैसलियों के लिए, जिस शरीर को अच्छा कहलाने के लिए इतना इतना मजदूरी की, उसको तो जला देना। कितना बैंक बैलेंस किया, कितना कुछ किया, लेकिन सब कुल मिलाते तो शरीर के लिए। और ये शरीर का हालत क्या होने वाला है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होने वाला है, दिखता है।
विश्रांति पाते हम उसी अपने आत्मदेव में विश्रांति पा रहे, जहां से भावुक लोगों को भावना का अमृत मिलता है, उस अमृत आधार में हम गोता मार रहे हैं। जहां से भोगियों को भोग के द्वारा सुख का एक पलकारा मिलता है, उस सुखदाता स्वरूप चैतन्य आत्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। जहां प्राणमय कोष वाले को प्राणायाम आदि और दिशारत्न आदि से जो सुख की झलक मिलती है, उस झलक के मूल स्वरूप चैतन्य परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। जहां मन के अनुकूल घटना घटने पर सुख की झलकें पैदा होती है, जिसकी सत्ता से ये झलक पैदा होती है, मनोमय कोष वालों को जहां से सुख का एक पलकारा झलकारा प्राप्त होता है, उस पलकारा जलकारा का उद्गम स्थान जो आत्मदेव है, उस